प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम डॉक्टर लुका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे आसपास का वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि हमारे प्रतिदिन का जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है और इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है दमा। आइए देखें कि डॉक्टर लुका दमा नामक रोग के विषय में क्या कहते हैं।
मित्रों आप सबको मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों मनोज अभी 24 वर्ष का ही था और बैडमिंटन खेलते समय उसका दम फूलता था। उसने यह भी देखा कि उसे खांसी भी आती थी। ऐसे ही महीनों बीत गए और उसकी खांसी और दम का फूलना इतना अधिक हो गया कि वह अब बैडमिंटन अच्छी तरह खेल नहीं पाता था। अगले 3 महीनों में राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता होने वाली थी और उसके लिए तैयारी करने में उसके सामने ये एक समस्या थी। उसके साथ उसके माता पिता को भी बहुत चिंता हो रही थी। अब वे क्या करें। वे अपने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसका एक्सरे करवाया परंतु सब ठीक था। कुछ और परीक्षण करवाए और डॉक्टर ने बताया कि मनोज को दमा की शिकायत है। मनोज और उसके माता पिता ने इस रोग के बारे में सुना तो था परंतु वे इस रोग के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते थे। उन्होंने डॉक्टर से बहुत प्रश्न पूछे और डॉक्टर ने उन्हें एक साहित्य दिया जिसे उन्होंने पढ़ा। उन्होंने दमा रोग के बारे में जो सीखा वह यह था कि स्त्री और पुरुष दोनों को दमा रोग होता है, वरन बच्चों को वयस्कों की तुलना में अधिक होता है। अफ्रीका में तो 5 से 10% जनता को दमा की शिकायत है। ये अफ्रीका में ही नहीं संपूर्ण विश्व में चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी देखा कि इसकी वृद्धि का मुख्य कारण औद्योगीकरण में वृद्धि के कारण प्रदूषण का बढ़ना है। मित्रों मनोज ने अपने डॉक्टर से इस रोग के लक्षणों के बारे में जानना चाहा जो खांसी और दम फूलने के अतिरिक्त हैं। रोगी जब सांस लेता है तब कभी कभी या सदैव सू सू की आवाज आती है और छाती में अक्सर जकड़न बनी रहती है। दमा रोग के कारण क्या हैं? जैसा हमने पहले कहा कि इसका मुख्य कारण प्रदूषण है, दमा व्यायाम के कारण भी उत्पन्न होता है जैसा मनोज को था। यह दमा व्यायाम आरंभ करने के 5 से 10 मिनट बाद होता है। दूसरा, कुछ दवाइयां भी दमा उत्पन्न करती हैं परंतु ऐसी स्थिति 10% से कम रोगियों में देखी गई है। दमा अत्यधिक गंभीर समस्या है। तीसरा कारण है व्यवसायिक अर्थात काम के स्थान पर उपस्थित तत्व के कारण दमा होना। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि दमा काम करने के कुछ ही सप्ताह में हो सकता है या वर्षों भी लग सकते हैं। यह मुख्य दमा के कारण है। मित्रों कुछ परिवारों में अनेकों को दमा होता है। कहने का अर्थ है कि दमा अनुवांशिक भी हो सकता है। इसके कारण तो स्पष्ट नहीं है परंतु अनुवांशिक रोगियों की संख्या में कमी मित्रों नहीं है। मनोज ने डॉक्टर को बताया कि उसने यह देखा है कि उसका दमा दौड़ने ही से नहीं ठंड में दौड़ने से अधिक परेशान करता है। डॉक्टर ने बताया कि दमा को उत्तेजित करने वाले कुछ उत्प्रेरक हैं जो निम्नलिखित हैं जैसे ठंडी हवा, गर्म हवा, धूल, मानसिक तनाव तथा संक्रमण। इसलिए रोगियों को इन उत्प्रेरकों से बचना चाहिए कि वे दमा का दौरा पड़ने से बच पाएं। मित्रों चलते चलते मनोज ने डॉक्टर से पूछा कि क्या दमा का उपचार है। डॉक्टर ने कहा हाँ है भी और नहीं भी। अधिकांश बच्चे युवावस्था में पहुंचने तक दमा से उभर आते हैं और जब वे वयस्क हो जाते हैं तब उन्हें दमा की कोई शिकायत नहीं होती है। परंतु वयस्कों के साथ ऐसा नहीं है। वयस्कों को यदि दमा हो जाए तो उन्हें आजीवन उसके साथ जीवन निर्वाह करना पड़ता है। मित्रों बाइबल प्रभु यीशु के चमत्कारों की चर्चा करती है। यूहन्ना 9:1-7 में लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में इसे धो ले। मित्रों शीलो का अर्थ होता है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। 1-2 घंटे बाद प्रभु यीशु ने फिर उस व्यक्ति को देखा और उससे पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसने उसे दंडवत किया। मित्रों, यह हमें यूहन्ना उसके 9 अध्याय 35 से 38 में मिलता है। मित्रों, इस वृत्तांत का अभिप्राय क्या है? इससे प्रकट होता है कि प्रभु यीशु को रोगों पर भी सामर्थ्य प्राप्त है कि उनका चमत्कारी रूप से निवारण करें। अंत में इससे स्पष्ट व्यक्त किया गया है कि रोग मुक्ति के बाद यीशु के चमत्कार के निमित्त उसकी उपासना करना आवश्यक है। इसी पुस्तक में, जो सन 90 में लिखी गई थी और बाइबल का एक भाग है, यूहन्ना कहते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठा, जो सबसे बड़ा चमत्कार है। यीशु ने अपने एक शिष्य, जो कि थोमा कहलाता है, उससे कहा। यह मित्रों हमें यूहन्ना उसके 20 अध्याय 26 से 3 में मिलता है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। द्वार बंद थे तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु संसार के पापों को उठाने के कारण क्रूस पर मर गया था। मित्रों, थोमा ने यीशु के हाथ में कीलों के निशान देखकर उसकी प्रभु एवं परमेश्वर के रूप में उपासना की। आगे यूहन्ना लिखते हैं कि बाइबल ने यीशु के चमत्कारों के उल्लेख का उद्देश्य यह है कि हम यीशु पर विश्वास करें कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके हम उसके नाम में अनंत जीवन पाएं। इससे पूर्व कि हम आगे की चर्चा को बढ़ाएं, हम दमा के संबंध में कुछ और प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि दमा का क्या उपचार है। मनोज ने सीख लिया था कि धूम्रपान नहीं करना है, वरन धूम्रपान करने वालों के आसपास भी नहीं रहना है। उसका पिता धूम्रपान करता था, परंतु अपने पुत्र के कारण उसने धूम्रपान करना त्याग दिया। उन्होंने जाना कि दमा के उपचार की दवाइयाँ भी हैं। ये दवाएँ अच्छी और सुरक्षित हैं। यह उपचार आपके हाथ में सुविधाजनक एक उपकरण में होता है। मनोज अपनी दवाई व्यायाम के पूर्व ही लेता था, वह हर समय अपनी दवाई नहीं लेता था। परंतु कुछ दमा रोगी ऐसे सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, उनका दमा कुछ समय बाद अति गंभीर हो जाता है और उन्हें प्रतिदिन दवाइयाँ खानी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी को धूल से समस्या है जो दमा की उत्प्रेरक है, उसका घर सदा स्वच्छ रखा जाए, घर में हवा के फिल्टर लगाए जाएं और घर में पालतू जानवर ना रखे जाएं, ना ही धूम्रपान किया जाए। उन्हें फ्लू और निमोनिया के टीके लगवाने चाहिए। अंत में, दमा रोगियों के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना भी आवश्यक है। इससे हमारे फेफड़ों की क्षमता बनी रहती है, वरन सामान्य से अधिक होना चाहिए। इससे हमारा वजन भी नहीं बढ़ता, क्योंकि मोटापा दमा रोगियों के लिए अहितकर है। मनोज के समान व्यायाम प्रेरित दवा वाले रोगी व्यायाम या खेलने से पूर्व दवाई खा सकते हैं कि व्यायाम करने में बाधा उत्पन्न ना हो। वे भी जिन्हें व्यायाम प्रेरित दमा नहीं है, व्यायाम करने से पूर्व दवाई खाएं कि व्यायाम करने में उन्हें कठिनाई ना हो। यदि किसी का दमा गंभीर हो तो वह क्या करे? ऐसे मनुष्यों में कुछ उपचार के कारण अच्छा निर्वाह करते हैं। आज संसार में दमा की 30 दवाई हैं। कहने का अर्थ है मित्रों कि दमा का अच्छा उपचार उपलब्ध है। मित्रों, कुछ रोगियों का दमा उग्र धारण करके भड़क जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए किसी का दमा उग्र रूप धारण करे तो तुरंत दवा लेकर उसका भड़कना रोकें। ऐसी गंभीर दशा में रोगी को ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, और उसे ऑक्सीजन भी दी जाए कि उन्हें सांस लेने में असुविधा ना हो। मित्रों, हमने दमा रोगियों को सांस लेने में सहायक दवाइयों के बारे में चर्चा की है, परंतु हम ये कैसे जानेंगे कि प्रभु यीशु हमें पापों से कैसे बचाता है? यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जानना है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है। मित्रों, यह हमें रोमियों उसके 6वें अध्याय और 23 पद में मिलता है। रोमियों की पुस्तक सन 63 में रोम के मसीही जनों के लिए लिखी गई एक पत्र है, जिसमें बाइबल में संयोजित किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि हमारे पापों की मजदूरी मृत्यु है। यह तो अच्छी मजदूरी नहीं है, परंतु वरदान, अर्थात जिसके लिए परिश्रम नहीं किया गया है, वह अनंत जीवन है और प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह एक अद्भुत प्रतिज्ञा है। हम इस वरदान को कैसे प्राप्त करते हैं? बाइबल इसका उत्तर देती है जो पूर्व तुर्किस्तान के इफिसुस नगर को लिखे पौलुस के पत्र जो कि सन 65 में लिखा गया है व्यक्त है। इफिसियों 2:4-9, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मित्रों, यह कैसी प्रभावी अभिव्यक्ति है, जब हम अपने अपराधों कुकर्मों में ही थे तब परमेश्वर ने अपने महान प्रेम के कारण हमें प्रभु यीशु में नया जीवन दान दिया। यह उसका प्रेम वरन महान कृपा थी। ध्यान दें, यह परमेश्वर का निर्मल दान और वरदान है। हम इसे पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम इसकी कीमत नहीं चुका सकते जैसे दवाइयों को पैसा देकर खरीद सकते हैं, हम परिश्रम करके इसका उपार्जन नहीं कर सकते। तो हमें केवल विश्वास करना है मित्रों, और विश्वास करके हम क्या प्राप्त करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और फिर जी उठा। यूहन्ना की पुस्तक में बाइबल कहती है, यूहन्ना 3:16 में यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रों, प्रभु यीशु में विश्वास करने पर हमें अनंत जीवन का दान दिया जाता है। हमारा यह विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया और फिर जी उठा, जो कि हमें रोमियो उसके 10:9-10 में मिलता है। मैं फिर स्मरण कराता हूँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। मित्रों, यदि हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु संपूर्ण जगत का प्रभु है, कि वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया और मृतकों में से जी उठा कि मृत्यु पर अपनी जय प्रकट करे, तो हम अपने पापों से बचा लिए जाएंगे और सदा के लिए उसके साथ स्वर्ग में वास करेंगे। अब आप पूछेंगे कि हम कैसे बचाए जाएंगे। मित्रों, आप ये प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मैंने पाप किए हैं। मैं अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे पापों से उभारने के लिए मेरे पापों के कारण क्रूस पर मर गए थे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे कि पाप और मृत्यु पर अपना सामर्थ्य प्रकट करें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मित्रों, यदि आपने प्रार्थना की है और ये आपका विश्वास है तो आप अनंतकालीन राज्य की संतान हैं। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ मिला होगा। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09-588-20414। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।